नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय का स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा का चार दिन का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा करना सरकार और विपक्ष की जिम्मेदारी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि विश्राम सदन की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने आज मिरांडा हाउस कॉलेज में पिंक बूथ और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायालय ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के निर्णय का स्वागत किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं और उनके राजनीतिक समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए।
माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं।
वहीं दिल्ली सरकार में कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली दंगा एक सोची समझी साजिश थी।
ये पुनः उस बात को साबित करता है, रेखांकित करता है जो शुरू से सब लोग कहते आ रहे हैं कि दिल्ली का दंगा जो है एक सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, तैयारी के साथ दिल्ली में दंगे किए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर, वो आज इस बात को साबित करता है कि ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे, इनके पीछे इन लोगों ने तैयारी की थी और प्लानिंग के साथ दिल्ली को जलाने का अपराध किया गया था।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि विश्राम सदन शुरू किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आयोजित इस स्थल का उद्देश्य बाह्य रोगियों के लिए मुफ्त भोजन, कंबल और शौचालय की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इस पहल के माध्यम से भीड़भाड़ और रात भर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या का समाधान करना है। विश्राम सदन सुविधा के बारे में बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉ एम निवास ने एम्स आने वाले सभी मरीजों को बिना रुकावट सेवाओं के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आने का आग्रह किया।
जो भी पेशेंट्स आना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आइए ताकि ये कष्ट ना लें इनके लिए। सेकेंड थिंग इज है कि जो भी पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, अगर उनके अटेंडेंट्स के लिए रहने की जगह जरूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे पास सुविधा है। ये जो सुविधा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा आपको, और विश्राम सदन का भी आपका पब्लिक डोमेन में है, डैशबोर्ड में अवेलेबिलिटी है, वो लोग वहां से बुकिंग ले सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम MCD की स्थायी समिति के सदस्यों ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट और 2026-27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए और आगामी बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय DO के मिरांडा हाउस कॉलेज में पिंक बूथ और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के गेट नंबर 4 पर इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बूथ महिला पुलिस द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, लेकिन इसकी सेवाएं सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। इस अवसर पर डीयू के प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस की यह पहल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस महीने की 31 तारीख तक चलने वाले इस अभियान के तहत सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों और सड़क उपयोग के नियमों और सावधानियों और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। देश के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली रेल विभाग के अनुसार दिल्ली जाने वाली लगभग 5 ट्रेनें 3 घंटे से अधिक विलंबित हैं, जिनमें बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस, केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी दुरंतो एक्सप्रेस और सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस शामिल है। रेल विभाग की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेनों की स्थिति की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2026 समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान ने देश के राष्ट्रीय सम्मान, संप्रभुता और जनता की रक्षा के प्रति संकल्प को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी अपने आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन के साथ लगातार जिम्मेदार और देशभक्त नागरिकों की पीढ़ियों का पोषण कर रही है। श्री राधाकृष्णन ने पर्वतारोहण, साहसिक गतिविधियों, युवा कार्यक्रमों और आपदा राहत प्रयासों में एनसीसी कैडेटों की उपलब्धि के लिए भी उन्हें बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खुद बातें मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह निर्णय रेबीज के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलाव पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक संचालन मैरी साग्या धनपाल तथा भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और पूर्व वरिष्ठ बैंकिंग पेशेवर डॉ नरेंद्र कुमार भसीन परिचर्चा में शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सदन में रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा करना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।
पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी।
सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा मात्र 10 महीने में दिल्ली में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों से संतोष का भाव उत्पन्न हुआ है। श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाले समय में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।
आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने मात्र 10 महीनों के अंदर दिल्ली में ग्राउंड पर बहुत सारा कार्य किया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है उसके रिजल्ट्स आपको जो है 2 साल 2.5 साल में देखने लगेंगे।
अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आज अपने अभिभाषण में कहा कि दिल्ली में कई पुरानी समस्याएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उन समस्याओं को हल कर लेगी। श्री सक्सेना ने कहा कि पिछले 10 महीने में नकारात्मकता को दूर करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब अम्बेडकर के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीने में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक फैसले लिए हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष सरकार ने 1,00,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यवसायिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। श्री सक्सेना ने कहा कि ई गवर्नेंस के माध्यम से 75 डिजिटल सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया गया है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिसेस का क्रियान्वयन किया गया है, जो लंबे समय से लंबित। प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक, वर्षभर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना आरंभ की। उन्होंने कहा कि हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। केवल 10 महीने में 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर बिना प्रदूषण करने वाले सार्वजनिक परिवहनों को सशक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए RWA को 3,000 इलेक्ट्रिक हीटर निशुल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। श्री सक्सेना ने सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने के निर्णय को सराहते हुए कहा कि आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, जो कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि शराब की दुकानों को छोड़कर सभी निर्माण और वाणिज्यिक स्थानों को 24 घंटे सुविधाएं प्रदान की गई हैं। साथ ही 21 वर्षों से लागू पंजीकरण की अनिवार्य नवीकरण व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में एकत्रित किया गया है। श्री सक्सेना ने बताया कि इससे न केवल कानूनों की जटिलताओं को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए जिला परियोजना निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 1400 करोड़ की राशि के साथ मुख्यमंत्री विकास निधि को स्वीकृति दी गई है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। श्री सक्सेना ने कहा कि वर्षों से उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आते ही यमुना की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और यमुना सफाई को लेकर कई स्तर पे एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा एसटीपी लगाए जा रहे हैं और वर्तमान एसटीपी को अपग्रेड करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय का स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा का 4 दिन का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा करना सरकार और विपक्ष की जिम्मेदारी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि विश्राम सदन की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने आज मिरांडा हाउस कॉलेज में पिंक बूथ और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।